करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़े।
ओम शांति। आप सभी ने कल राजयोग अभ्यास के विभिन्न सत्रों में आत्मा की सत्य पहचान, परमात्मा का सत्य ज्ञान और किस विधि से हम भगवान को याद करें, ये सब समझा है। तो राज्यों का अभ्यास आपको सहज लग रहा है या कठिन लग रहा है? क्या कहेंगे, सहज है या कठिन है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाएं। तो इसीलिए कहा सहज राजयोग। राजयोग सहज है क्योंकि इसमें हम कोई कठिन आसन नहीं करते हैं, कठिन मंत्रों का जाप भी नहीं करते हैं। ये मन से ईश्वर की याद है। जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, स्वाभाविक स्नेह से संबंध से वो याद आती है, ऐसे ही ईश्वर के साथ संबंध से हम उसे याद करते हैं। तो राजयोग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है। ये योग किसी संत महात्मा ने नहीं सिखाया, स्वयं परमात्मा शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो राजयोग की शिक्षा देते हैं। और इसीलिए राजयोग सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला योग भी है। आपने समझा, परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, सभी धर्मों में मान्य हैं, सभी धर्म उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं। हिंदू धर्म में भी हम शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करते हैं। तो वो सभी धर्मों में मान्य सर्वोच्च स्वरूप है जिसका हम राजयोग में ध्यान करते हैं। राजयोग हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, स्वयं का राजा बनाता है। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, अर्थात आँखों से जो नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, कानों से जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं, मुख से जो वचन नहीं निकलने चाहिए वो वचन हमारे मुख से निकलते हैं। राज्यों का अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारी कर्मेंद्रियाँ संयमित होने लगती हैं और इस तरह से हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। इसीलिए ये राजयोग है क्योंकि ये हमें स्वयं पर राज्य करने की कला सिखाता है। राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला योग है, इसलिए भी इसे राजयोग कहते हैं। क्योंकि योग अभ्यास करने से हम मनुष्य से देवता बनते हैं और देवताओं की पूजा आज के राजा भी करते हैं। आपने सुना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो वो दिव्य गुण, वो लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं जो भविष्य प्रारब्ध के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं। ये इसलिए भी राजयोग है क्योंकि इसमें अनेक राज समाये हुए हैं। उन राजों को समझने के बाद हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। आत्मा का राज, परमात्मा का राज, समय का राज, ये सब हमने समझा तब हम राजयोग का अभ्यास कर पाते हैं। और इसीलिए ये राजयोग है। राजयोग की तुलना हम एक बांध से कर सकते हैं। जैसे किसी नदी पर बांध बनाया जाता है तो जल का संचय किया जाता है और उस संचित जल को अनेक रचनात्मक कार्यों में प्रयोग करते हैं। उससे नहरें निकाली जाती हैं, खेतों तक उस पानी को ले जाया जाता है, खेतों की सिंचाई होती है, वो पानी को पीने में प्रयोग किया जाता है, उस पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन स्थापन करके बिजली उत्पादन किया जाता है, जिससे पूरे शहर को, गांव को बिजली मिलती है। तो ऐसे ही राजयोग अभ्यास के दौरान हम शुद्ध संकल्प की शक्ति का संचय करते हैं। मन में भी निरंतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है और अगर वो ऐसे ही चलता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम उसे सही दिशा देते हैं, मन की शक्ति का हम रचनात्मक प्रयोग करते हैं, तो फिर जीवन में हम सफल होते हैं और चमत्कारिक उपलब्धियां भी इंसान हासिल कर सकता है। ऐसे ही राजयोग एक चार्जर की तरह है। हम देखते हैं, बैटरी को जब चार्जर में लगाते हैं और पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो विज्ञान कहता है बैटरी डिस्चार्ज इसलिए होती है क्योंकि बैटरी के केमिकल कंपोनेंट्स वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो बैटरी काम करने लगती है। ऐसे ही आत्मा की शक्तियां जब क्षीण होती हैं तो फिर हमारा जीवन भी डिसऑर्गेनाइज होने लगता है। डिसऑर्गेनाइज होने का मतलब, हाँ, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, सब कुछ अव्यवस्थित होता है। लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी को हम परमात्मा रूपी पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं राजयोग के द्वारा, तो वो चार्ज होने लगती है, यानी वो अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है और जीवन व्यवस्थित होने लगता है। तो ये अंतर हम महसूस करने लगते हैं जब हम प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा से जो हमारा संबंध है वो कोई आज हम नया संबंध जोड़ने जा रहे हैं, परमात्मा से हमारा अनादि संबंध है, लेकिन वो टूटा हुआ है। वो संबंध अगर टूट जाता है, दुनिया में भी हम देखते हैं, माता पिता बच्चे के संबंध में अगर बच्चा बिछड़ जाता है माँ बाप से किसी भी कारण से, या घर छोड़कर चला जाता है, तो अब वो उन सब प्राप्तियों से वंचित हो जाता है जो उसे माता पिता से होनी चाहिए। तो ईश्वर पिता तो है, लेकिन अगर उसके साथ हमारा संबंध नहीं है तो उसकी प्राप्तियों से हम वंचित हैं। तो अगर कनेक्शन टूटता है, जैसे हम देखते हैं हमारे घर में बिजली आ रही है, बल्ब जलता है, तो इसका मतलब पावर हाउस से हमारा कनेक्शन है, तब वो बिजली आ रही है। लेकिन अगर बिजली नहीं आ रही है तो कुछ कारण हो सकते हैं, या तो पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया, या फ्यूज उड़ गया है ऐसा कहते हैं, या बल्ब ही फ्यूज हो गया है, तो हम चेक करके उस अनुसार उसमें सुधार करते हैं, फिर वो बिजली आती है। तो यहाँ भी हमें देखना है कि परमात्मा रूपी पावर हाउस से आत्मा में शक्ति नहीं आ रही है तो वो कनेक्शन हमारा कहाँ टूटा हुआ है। और जब हम उस कनेक्शन को पुनः जोड़ते हैं तो फिर से आत्मा चार्ज होने लगती है। राजयोग सभी योगों का फल देने वाला है। इस भारत में करीब 7-8 प्रकार के योग किए जाते हैं। योग भारत की संस्कृति है और जितने भी योग हैं वो सभी किसी संत महात्मा के सिखाए हुए योग हैं। तो हम देखते हैं भारत में ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, कर्म योग, हठ योग, क्रिया योग, इतने प्रकार के योग किए जाते हैं। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इन सभी योगों का फल हमें उसमें मिल जाता है। राजयोग ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान अर्थात समझ, हम इसमें समझते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा से मेरा क्या संबंध है, उनसे प्राप्ति क्या है। पूरा समझ से हम योग का अभ्यास करते हैं और इसीलिए अंधश्रद्धा नहीं है, किसी भी प्रकार का कर्म कांड राजयोग में नहीं है। तो राजयोग ज्ञान योग है, राजयोग बुद्धि योग है। हम मन बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं। मन माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का, जो अदृश्य माध्यम है, हमें दिखाई नहीं देता है। आज के समय में भी हम अदृश्य माध्यमों के अनुभवी हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं किसी भी कोने में, अपने देश के किसी कोने में, इस संसार के किसी भी कोने में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, बात करना चाहें तो। लेकिन दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हमें पता है कि हमारे मोबाइल सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं जो टावर से होती हुई दूसरे सेट तक जाती हैं और फिर वो रिटर्न होती हैं और इस तरह से हम बातचीत को सुनते हैं। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने मन में उसके प्रति चिंतन चलाते हैं, तो हमारे वो चिंतन के वाइब्रेशन भगवान तक पहुंचते हैं और उनकी शक्तियों को भी हम ग्रहण करते हैं। आपने समझा, हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अंतर है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं माना हम एक तरफा संवाद करते हैं, अपनी बात हम भगवान से कह देते हैं, लेकिन ईश्वर का हम कैसे सुने वो हमें ज्ञान नहीं है। तो भगवान भी हमसे कुछ कह सकता है, उस सुनने के लिए वो मन की स्थिति होनी चाहिए। तो मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन है, प्रेयर वन वे कम्युनिकेशन है, हमने कह दिया जो हमारे मन में है, लेकिन मेडिटेशन में हम भगवान की शक्तियों को भी स्वयं में समाते हैं, उसकी प्रेरणाओं को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें मन से भगवान से संवाद करने का अनुभव भी है। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, पता है कि मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति तो नहीं सुन रही है, कौन सुन रहा है, कौन सुनता है। हम समझते हैं भगवान जहाँ भी है उस तक मेरे मन की बात पहुँच जाएगी। और फिर जब हमारे भाव वैसे ही पूरे हो जाते हैं तो हम समझते हैं भगवान ने मेरी सुन ली। कैसे सुनी? तो वही माध्यम हम योग में प्रयोग करते हैं, मन के विचार ईश्वर तक पहुंचते हैं, जिसे हम रूह रिहान कहते हैं। आत्मा के स्तर पर मन से ये संवाद हम ईश्वर से कर पाते हैं, इसलिए राजयोग एक बुद्धि योग है जिसमें हम अंतर चक्षु का प्रयोग करते हैं। राजयोग कर्म योग भी है। जब कर्म करते हुए ईश्वर को याद करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। 2 मिनट हम साइलेंस का अभ्यास करेंगे। कर्म करते हुए जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं। कर्म में निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव आता है और कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं। कहते हैं जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हमें फल मिलता है, या जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं अनेक प्रकार के बीज बोए जाते हैं। तो यदि हम आम का बीज बोते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा की याद में किए गए कर्म सत्कर्म क्या फल देने वाले होते हैं। तो जैसे हमने आम का बीज बोया तो वो हमें काफ़ी सालों के बाद फल देगा, लेकिन जब एक बार हमें फल मिलता है तो फिर हम ही उस फल को नहीं खाते हैं लेकिन हमारी पीढ़ियां भी उस फल को खाती हैं, यानी वो अनगिनत हो जाता है, इतना मल्टीप्लाई हो जाता है एक बीज का फल। ऐसे ही जो हम सत्कर्म करते हैं यानी ईश्वर की याद में कर्म करते हैं वो पदम गुना फल देने वाले होते हैं। वर्तमान में भी उसका प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है, हम खुशी शक्ति का अनुभव करते हैं और भविष्य के लिए भी वो प्रारब्ध भाग्य के रूप में संचित हो जाता है जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जाता है। और हम साधारण कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप घर में भोजन बनाते हैं या अपनी दैनिक क्रियाएं जो भी करते हैं, कई बार जब हम ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस में होते हैं तो हम हर समय बुद्धि नहीं लगाते हैं, कुछ कामों के हम बहुत अभ्यस्त होते हैं, बिना बुद्धि लगाए वो काम करते हैं, तो उस समय हम परमात्मा में अपने मन को लगा सकते हैं। और इस तरह से अगर हम ये समझते हैं कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, तो ये एक्सक्यूज भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये कर्म तो हम अवश्य करते हैं जो हमारे दैनिक कर्म हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना आना जाना, ये कर्म करते हुए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मन को ईश्वर में लगाना है। कोई आपको बैठकर योगासन नहीं करना है, मंत्रों का जाप नहीं करना है, आपने कल समझा आधार विधि के सत्र में, हम राजयोग में कोई भी कठिन क्रियाएं नहीं करते हैं, सहज एक संबंध में जैसे याद आती है ऐसे ही हम ईश्वर को याद करते हैं। फिर राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव। जितने भी परम भक्त हुए हैं इस संसार में, उन्होंने भगवान से कोई ना कोई संबंध का अनुभव किया। हम भी भक्ति में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो आज तक तो सिर्फ गाते आए थे, उस संबंध का अनुभव हम नहीं करते थे, लेकिन राजयोग में हम ये सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ। जैसे मीराबाई ने भगवान के साथ पति का संबंध अनुभव किया, प्रहलाद ने पिता का संबंध अनुभव किया, अर्जुन ने सखा का संबंध अनुभव किया, ऐसे ही अहिल्या देवी ने बच्चे के संबंध के रूप में उसे याद किया। जिस भक्त ने जिस संबंध से भगवान को याद किया, उसकी आराधना की, समय आने पर उसने उस संबंध का फल उसे दिया। भगवान जो संबंध निभाता है वो सांसारिक संबंध शायद ना निभा सके। हाँ, कई बार जब हम दुख में होते हैं, परिस्थितियों में होते हैं, तो उस समय हमारे समीप संबंधी हमारे होते हुए भी हमारे पास नहीं आ सकते, वो कहीं दूर ऐसे स्थान पर रहते होंगे, हम भाई होगा कहीं दूर रहता होगा, बहन को जब वास्तव में आवश्यकता है या माता पिता हैं जब वास्तव में आवश्यकता है वो हमारी मदद के लिए हाजिर नहीं हो सकते। या कई बार चाहते हुए भी कर नहीं सकते। लेकिन भगवान को हम जब जहां जिस समय याद करें वो हमारे लिए हाजिर हो जाता है और एक में ही सर्व संबंध समाये हुए हैं। दुनिया में माता अलग होगी, पिता अलग होगा, बंधु अलग, सखा अलग, गुरु अलग, शिक्षक अलग, लेकिन परमात्मा एक में ही सर्व संबंधों का हमें अनुभव करा सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग भक्ति योग है, राजयोग संन्यास योग भी है। अगर हम संन्यास शब्द कहते हैं तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में संन्यास का अर्थ होता है घर बार छोड़ करके भगवान की याद में हम कहीं तीर्थ पर जाकर बैठते हैं, जंगल में जीवन यापन करते हैं, यानी गृहस्थ की जिम्मेवारियों का त्याग करते हैं। तो हमें ये लगता है कि यदि हम ज्ञान के मार्ग की ओर जाएंगे तो कहीं सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे। यही परिवार का भी कोई सदस्य अगर आता है तो उसके लिए भी भय होता है कि कहीं ये सब कुछ छोड़ तो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन आपने कल भी सुना कि परमात्मा हमें छोड़ना नहीं सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए, अपने सर्व कर्म करते हुए हमें अपने बुराइयों का संन्यास करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे जीवन में विष खोलते हैं, जिन्हें हम छोड़ना ही चाहते हैं पर जानते नहीं कैसे छोड़ें या छोड़ने की शक्ति नहीं है, उन बुराइयों का संन्यास राजयोग के द्वारा परमात्मा हमसे कराते हैं। और वो संन्यास उस संन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई घर बार छोड़कर के सन्यासी हो जाए और बुराइयों का संन्यास ना कर पाए तो वो संन्यास भी व्यर्थ हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं ऐसे मिसाल, ऐसे संतों के मिसाल सुनते हैं कि किस तरह से वो बुराइयों में लिप्त हो गए, तो हमारी सहज भावना उनके प्रति समाप्त होने लगती है। लेकिन घर ग्रस्त में रहते हुए बुराइयों का त्याग करना सचमुच उस त्याग से भी महान त्याग है, और वो त्याग हमें भगवान सिखाते हैं। वो हमें साधन का त्याग करना नहीं, संबंधों का त्याग करना नहीं, उसे श्रेष्ठ बनाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, अपने संबंधों को मधुर बनाना है। और ऐसे ही राजयोग समत्व योग है। समत्व योग का समत्व योग की जो चर्चा है वो गीता में आती है। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख से हम गुजरते हैं। इन स्थितियों में मन विचलित होता है। जब हम दुखी होते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और जब हमारी निंदा होती है, हानि हो जाती है, तो भी हमारा मन अशांत होता है, परेशान होता है। कभी हम बहुत सुखी होते हैं, सफल होते हैं, तभी भी मनुष्य में कहीं अहंकार जागृत होने लगता है, तो दोनों ही अज्ञान है। योग अभ्यास में हर स्थिति में मन संतुलित रहता है। यहाँ तक कि ये कला भी हम सीखते हैं कि दुख की परिस्थितियों में भी हम सुख कैसे अनुभव करें, वो दुख भी सुख की ओर ले जाने का मार्ग है। तो स्थिर चित्त होते हैं, ये योग की सिद्धि है। सही राजयोग हठ योग है। हठ योग आज हम देखते हैं भक्ति में लोग भगवान को हठ से प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रसन्न होकर भगवान मुझे दर्शन दे दे, या हम उसके लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नवरात्रे होते हैं जब कुछ लोग आठों दिन उपवास करते हैं या निर्जल व्रत भी करते हैं, इतना कठोर तप भी करते हैं कि देवी के दर्शन मुझे हो या मेरी मनोकामनाएं पूरी हों। और फिर अगर पूरी होती हैं तो हम भगवान से जो वादा करते हैं से हम पूरा करते हैं। अगर हमने ये कहा कि हम देवी के मंदिर तक पैदल चलकर जाएंगे, इतने मील की यात्रा पैदल करेंगे, कुछ लोग साष्टांग दंडवत करते हुए भी जाते हैं, कई बार हम देखते हैं, तो ये हमने एक संकल्प किया, एक जिद के रूप में, जैसे भगवान से हमने वो हठ किया और उसे हम पूरा करते हैं। और जब हम व्रत करते हैं, व्रत में मुझे पता है कि मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना है और कोई उस समय मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन लेकर परोसता है, तो हम कहते हैं नहीं, आज मेरा व्रत है, हम ये भोजन नहीं स्वीकार कर सकते। अगर मैंने स्वीकार किया तो मेरे भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो राजयोग में हम इस तरह का हट नहीं करते, लेकिन प्रतिज्ञा, कुछ प्रतिज्ञा जो दृढ़ संकल्प है वो हम भगवान से करते हैं, वो भी एक व्रत है। जैसे आज सारा दिन चाहे जो हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो ये मैंने व्रत लिया है। तो फिर जैसे उस व्रत में किसी ने भोजन परोसा तो भी हमने स्वीकार नहीं किया। आज कई परिस्थितियां आ सकती हैं मेरे सामने जो गुस्सा लाएंगी मुझे, लेकिन क्योंकि मैंने व्रत किया है भगवान से तो मुझे गुस्सा नहीं करना है चाहे जो हो जाए। और एक दिन हम इसमें सफल होते हैं तो आगे के लिए हमारे में वो उत्साह होता है कि हम इसे कर पाएंगे। तो इसीलिए राजयोग हठ योग भी है, सभी योगों का फल देने वाला है। हम सभी भगवान को याद करते हैं, हम सबकी अपनी अपनी विधियां हैं। आपने कल समझा बहुत विस्तार से, मंत्र जाप करना, माला फेरना, स्तुति करना, आरती करना, दिया करना, चित्र रखना मूर्ति के सामने, विशेष अवसरों पर जब विशेष दिवस होते हैं तो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना, ये सब हम करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी मन भगवान में नहीं लगता, बहुत मेहनत हम करते हैं तो भी मन भगवान में एकाग्र नहीं होता, ये हमेशा हमारी शिकायत रहती है। तो राजयोग में हम इस तरह से ईश्वर को याद नहीं करते हैं। राजयोग अभ्यास जब हम प्रारंभ करते हैं तो आपने समझा, राजयोग अभ्यास में हम ईश्वर से समानता के आधार पर संबंध का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले हम आत्मचिंतन से ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। राजयोग का अभ्यास एक यात्रा की तरह है, पर ये अंतर यात्रा है। और भी हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, और जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो माइलस्टोन्स होते हैं, वो बीच बीच में हमें बताते हैं कि हमारी मंजिल कितना दूर है, लक्ष्य से हम कितना दूर हैं। ऐसे ही राजयोग में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ज्ञान का मनन चिंतन, आत्मचिंतन। ज्ञान के मनन चिंतन से हम इस राजयोग की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और दूसरी अवस्था में हम ईश्वर से संवाद करते हैं, जिसको हम कहेंगे आम बोलचाल की भाषा में बातचीत करना, अपने दिल के भाव व्यक्त करना, भावनाएं व्यक्त करना, मुलाकात करना, मिलन होता है ईश्वर से। जब मिलन होता है तो जरूर कुछ भाव हम अपने मन के ईश्वर के सामने रखते हैं, तो वो है कम्युनिकेशन, संवाद करना। और तीसरी अवस्था में हम एकाग्रता का अनुभव करने लगते हैं, जब मन ईश्वर की यादों में समाने लगता है, यानी हम न्यारे हो जाते हैं इस भौतिक दुनिया से और एक दूसरे जगत में अपने आप को अनुभव करते हैं। और संसार की कोई बात उस समय हमें आकर्षित नहीं करती है। सब आकर्षण से मन परे हो जाता है, वो एकाग्रता की स्थिति तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था है अनुभूति। जो अनुभव हम भगवान से करना चाहें उस अनुभव में मन चला जाता है, क्योंकि अब ईश्वर की शक्तियों का प्रवाह हम महसूस करने लगते हैं। तो जो प्रथम अवस्था है, आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कैसे हमने प्रारंभ किया, तो हमारा मन इतना जल्दी एकाग्र नहीं होता है। आज तक हमने कभी मन को अभ्यास ही नहीं दिया है सही दिशा में जाने का। तो जैसे ही हम आत्मचिंतन ज्ञान चिंतन शुरू करते हैं तो मन में संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगती है। उसके कई कारण हैं। हमारे मन में कई बातों को लेकर के अनेक विचार चलने लग जाते हैं। आप शुरू करते हैं चिंतन, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा इस संसार में कर्म करने के लिए आई हूँ। ये ज्ञान का चिंतन है मानो, लेकिन यही दिशा में मन चलता रहे ऐसा नहीं होगा। आपने संकल्प दिया मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, तुरंत दूसरे दूसरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। आज मुझे क्या क्या और काम करना है, किससे मिलना है, या किससे फ़ोन पर बात करना है, अगर ऑफिस का कोई काम है तो वो काम याद आ जाएगा। और वो आत्मा का चिंतन वहीं ख़त्म। थोड़े समय के बाद याद आएगा, अच्छा हम तो योग कर रहे हैं, फिर वापस अपने मन को लेकर के आएंगे। फिर हो सकता है हमारी कोई मान्यताएं, हम इतने समय से संसार में सुनते आ रहे हैं सत्संग प्रवचन या और भी कई बातें, अब मैंने समझा मैं आत्मा हूँ, यहाँ मस्तक के मध्य में रहती हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। इसके पहले मैंने सुना है कि मैं आत्मा तो इस शरीर में व्यापक हूँ, आत्मा तो पूरे शरीर में है। अच्छा तो ये कैसे हुआ मैं ये आत्मा यहाँ रहती हूँ। हाँ, वो संशय, ज्ञान में संशय आया, क्यों क्या कैसे में हम चले जाते हैं, योग खत्म। या कई बार हमारे ही अंदर के बुरे संस्कार, तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन की अवस्था, जिसका शास्त्रों में यादगार है। देवासुर जो देवताएं थे और असुर थे, उन्होंने मिलकर के सागर मंथन किया। लेकिन जब सागर मंथन शुरू किया तो सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले विष निकला। और वो विष इतना तेज था कि उसके असर से देवताएं बेहोश होने लगे। तो फिर उन्होंने शिवजी का आह्वान किया और शिव ने उस विष को ग्रहण किया, और उसके बाद फिर से सागर मंथन प्रारंभ हुआ, और फिर अनेक मूल्यवान रत्न सागर मंथन से निकलने लगे, और अंत में अमृत निकला। और उस अमृत को विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया। सागर मंथन की यही कहानी है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, देवासुर मंथन ये हमारे अंदर ही चलता है, हमारे ही शुद्ध विचारों और अशुद्ध विचारों के बीच में एक संघर्ष अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाता है। और कई बार हम सोचते हैं हम योग करने बैठे थे, सिर भारी हो गया, योग में कुछ अनुभव तो नहीं हुआ। कई बार हम निराश होने लगते हैं और निराश होकर के अभ्यास छोड़ देते हैं, कुछ अनुभव तो होता ही नहीं है और सिर भारी हो जाता है। तो सिर भारी योग अभ्यास से नहीं हो रहा है, सिर भारी जो मन में बुरा चिंतन व्यर्थ चिंतन वो चलने लगा, उसकी वजह से सिर भारी हुआ। लेकिन हमें अभ्यास छोड़ नहीं देना है। हम अभ्यास करते हैं, ये होम्योपैथिक की गोलियों की तरह है। कई बार कहते हैं कि जब होम्योपैथिक की दवाई डॉक्टर देते हैं तो कहते हैं कि आपकी बीमारी बाहर निकलेगी, लेकिन आप घबराना नहीं, वो बीमारी बाहर निकल के धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। एलोपैथिक दवाई ऐसा नहीं करती है, एलोपैथिक दवाई बीमारी को दबा देती है और जैसे ही दवाई बंद करते हैं फिर से बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये ज्ञान का चिंतन, ये शुद्ध चिंतन, ये समर्थ चिंतन, ये होम्योपैथिक दवाई की तरह है। कई बार हमारे जो संस्कार दबे हुए हैं तले में, वो जैसे कोई चीज तले में होती है, हिला दो उसको तो ऊपर आ जाती है, तो ऐसे ही वो बाहर आने लगते हैं। पर ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन हमने कभी अपने मन का निरीक्षण किया ही नहीं, कभी हमने आत्म अवलोकन किया ही नहीं, कभी हम अपने भीतर गए ही नहीं। अभी हमने भीतर जाना प्रारंभ किया तो हमें दिखाई देने लगा कि मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, लेकिन उसको हम शिव को अर्पण कर देते हैं, क्योंकि हम परमात्मा शिव का ध्यान लगा रहे हैं। और उस शुद्ध चिंतन के प्रभाव से धीरे धीरे मन उस समर्थ स्थिति में आने लगता है और फिर हम योग के अनुभव में आने लगते हैं। मानो कोई दीवार मुझे तोड़नी है और उसे तोड़ने के लिए मुझे 100 हथौड़े लगाने पड़ते हैं, तो क्या हम कहेंगे 99 हथौड़े बेकार गए? क्या कहेंगे? 99 हथौड़े बेकार गए? नहीं, हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो टूट गई। ऐसे ही जितना भी अभ्यास हम कर रहे हैं, कोई भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है, हर अभ्यास मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। हो सकता है 10 बार मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 11वीं बार 1 मिनट के लिए भी शांति का अनुभव, वो मेरे मन को परमात्मा की ओर ले जाएगा और धीरे धीरे वो मिनट बढ़ते जाएंगे। हम सभी इसके अनुभवी हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था में हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, इसमें हमें निराश नहीं होना है। और धीरे धीरे मन दूसरी अवस्था में आ जाता है, जो हमने कहा हम ईश्वर से समीप संबंध का अनुभव करके अपने दिल के भाव उनके सामने रखते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हुए। क्योंकि जो संवाद होता है किसी से मिलने पर, वो संबंध के आधार पर ही होता है। हम कौन से संबंध में हैं? मानो एक बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस क्लाइंट से बात करता है, तो उसकी बातचीत उसी प्रकार की होगी। अगर कोई परिवार में है और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत उसी प्रकार की होगी। अगर हम दोस्तों की महफिल में हैं, तो फिर हमारे बातचीत का तरीका उसी तरह का होगा। और जितना समीप संबंध होगा, उतना ज्यादा लंबा समय तक हम बातचीत करेंगे। मानो कोई हमारे दूर के संबंध में है और कभी हम उनसे बात करते हैं, तो हम 2-4 बात करने के बाद समझ में नहीं आता क्या बात करें। हम पूछेंगे कैसे हो, क्या चल रहा है, फिर 1-2 बात और करेंगे और फिर बातचीत बंद हो जाएगी। लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे हमारी बातें खत्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि उनसे हम अपनी जिंदगी की हर बात शेयर करते हैं। और नहीं बताते हैं तो हमें खुद को ही चैन नहीं आता है। तो ईश्वर से कितना समीप संबंध मेरा है, उतना सहज हम ये संवाद उनके साथ कर पाएंगे। लेकिन आज के समय में दूर का संबंध है, इसलिए भगवान से हमारी बातचीत होती ही नहीं है। दूर का संबंध क्या है? टूटा हुआ है, जो हमने आपको समझाया। तो माता पिता, शिक्षक, गुरु, साजन सजनी, या हम कहेंगे दोस्त और बच्चा, ये 6 संबंध ऐसे हैं जिन संबंधों में मन रहता है, हमेशा ही कोई ना कोई संबंध में मन रहता है। इसमें से पहले तीन संबंध माता पिता शिक्षक और गुरु का जो संबंध है, वो संबंध में हम लेते ज्यादा हैं और देते कम हैं। दोस्त के संबंध में लेना भी होता है, देना भी होता है। ऐसे ही पति पत्नी के संबंध में भी यही बात होती है। तो जो पहले तीन संबंध हैं, वो बहुत मुख्य संबंध है, माता पिता शिक्षक और गुरु का संबंध ईश्वर के साथ अनुभव करना। माता पिता पालनहार होते हैं और हमेशा ही बच्चे अपने माँ बाप को स्नेह से याद करते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को प्रेम देते हैं। ईश्वर भी हमारा पिता है और जैसे ही हम इस संबंध का उससे अनुभव करते हैं, हमने ये समझा कि परमात्मा शिव हमारे परम पिता हैं, मैंने ये स्वीकार किया, उस घड़ी उनके पास हमारा अलौकिक दिव्य जन्म होता है। और जैसे जन्म होते ही बच्चा वारिस होता है, घर का वारिस होता है, यानी माता पिता की हर संपत्ति पर उसका अधिकार है, अधिकारी हो जाता है बच्चा, है ना। ऐसे ही परमात्मा को पिता स्वीकार करते ही उसकी हर प्राप्ति के हम अधिकारी हो जाते हैं। और जैसे माता पिता को पालना से, उनके गुणों से, उन्होंने जीवन में हमें लायक बनाने के लिए क्या क्या सहन किया होगा, क्या क्या त्याग किया होगा, मेहनत की होगी, उन सब बातों से उन्हें याद किया जाता है। तो विशेष गुणों से, माँ बाप के जो गुण हमने अपने जीवन में देखे, उनसे जो हमने प्रेरणा ली, उनसे जो जीवन में हमें मार्गदर्शन मिला, वो भूलते नहीं हैं। तो यहाँ भी परमात्मा पिता है, वो गुणों का सागर है और वो अपनी हर संपत्ति का वारिस हमें बनाता है, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, तो वो हम अनुभव करते हैं। और पिता संरक्षक भी होता है, तो भगवान भी हमारी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं इस संसार में दुख के समय ईश्वर को याद करते हैं, तो क्यों याद करते हैं, क्योंकि पता है दुख से रक्षा करने वाला तो एक ईश्वर है। हाँ, भले ही उस समय सर्व संबंधी हमारे साथ होंगे, लेकिन फिर भी हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो मनुष्य नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है, और इसीलिए उसे दुख हरता सुख करता कहते हैं, या कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति परम भक्त था भगवान का, और वो अपनी जीवन यात्रा को सपने में देख रहा था। एक दिन सपना देख रहा था, तो उसने देखा कि जब मेरे जीवन में बहुत कष्ट भरे दिन थे, क्योंकि भगवान को सदा ही वो साथ रखता था, और जब मेरे जीवन के बहुत खुशी भरे सुख भरे दिन थे, तो समुद्र के किनारे वो चल रहा है और उसमें कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसने ध्यान से देखा कि उसके सुख भरे दिनों में तो चार निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उसके दुख भरे दिन थे तब सिर्फ दो निशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसका विचार चलने लगा कि मेरे सुख के दिनों में तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन मेरे दुख के दिनों में क्या भगवान मेरे साथ नहीं थे, सिर्फ दो ही निशान हैं। तो उसने भगवान से शिकायत की कि ईश्वर, हाँ ऐसा कैसे, हाँ मनुष्य तो जरूर ऐसा करते हैं कि वो दुख के समय आपका साथ छोड़ देते हैं, आपने मेरा साथ ऐसे समय पर कैसे छोड़ दिया। तो भगवान ने उसको जवाब दिया कि जब तुम्हारे सुख भरे दिन थे तब तो मैं तुम्हारे साथ था ही, तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारे कष्ट भरे दिन थे तो मैं तुम्हारे कष्टों को और नहीं बढ़ाना चाहता था, उसको कम करने के लिए मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। तो वो जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के निशान हैं। हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में कई बार, जब हम अपने दुखों को भगवान को समर्पण कर देते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई अदृश्य शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि हम ऐसी परिस्थितियों को सहन कर पाते हैं, धैर्य रख पाते हैं, उनसे पार हो जाते हैं, जो हमें लगता है शायद हमारे लिए संभव नहीं था ऐसे दुख को पार करना। ये ईश्वर की शक्ति है कि वो हमारी ऐसे कष्ट भरे दिनों में भी जब हम उसे याद करते हैं तब हमारी रक्षा करता है, पिता के रूप में, मात पिता के रूप में। जैसे देखते हैं बच्चे ने अगर माता पिता की उंगली पकड़ी हुई है तो फिर वो बिल्कुल निश्चिंत होता है, कैसे भी भीड़ भरे रास्ते से जा रहा होगा, कैसे भी खतरे की जगह होगी, उसको पता है मैंने माँ बाप की उंगली पकड़ी हुई है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे संभाल रहे हैं। लेकिन वही बच्चे की उंगली छूट जाए तो क्या होता है, रोना शुरू कर देता है, घबरा जाता है एकदम, हाँ अब क्या होगा। भगवान की उंगली हमने पकड़ी हुई है, उस पिता की उंगली पकड़ी हुई है, तो इस संसार में कितने भी दुख, कितने भी कष्ट, कितने भी तकलीफें आए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें संभाल रहा है, संबंध का वो हमें अनुभव होता है, हम निश्चिंत रह सकते हैं, अपनी चिंताएं उसे सौंप सकते हैं। और ऐसे ही वो हमारा शिक्षक है, गुरु है। शिक्षक का संबंध से भी हम बहुत अपने टीचर को याद करते हैं जब हम उनसे पढ़ते हैं, और हम देखते हैं गुरु का संबंध भी हमारे जीवन में, क्योंकि वो हमें आत्म उन्नति का मार्ग बताते हैं, गुरु हमें अंतर जगत की ओर ले जाते हैं। भले शिक्षक हमें बाह्य जगत का ज्ञान देता है, वो हमें जीवन निर्वाह की कला सिखाता है, लेकिन गुरु हमें अंतर जगत की ओर ले जाता है, आत्मोन्नति का मार्ग दिखाता है। तो हम देखते हैं कई बच्चे जब घर में आते हैं पढ़कर, तो माँ को आकर के अपने शिक्षक की बातें, अपने टीचर की बातें सुनाते रहेंगे, हाँ टीचर ने क्या सिखाया। भले माँ को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चा जब भी होमवर्क करने बैठेगा, जब भी पढ़ेगा, उसे अपना टीचर याद आता रहता है, टीचर ने ऐसे कहा था, ऐसे करना है। तो टीचर कई बार ऐसे जीवन का निर्माण करते हैं कि विद्यार्थी उसे भूल नहीं पाता है। एक बार ऐसे ही मुझे घटना याद आती है कि एक गरीब बच्चा था, उसके माता पिता गरीब थे, वो सातवीं तक पढ़ा, बिल्कुल नंबर वन आता था क्लास में, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, लेकिन सातवीं के बाद उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि वो उसकी फीस नहीं भर सकते थे। तो जो टीचर था उससे बहुत प्रेम था उसको, क्योंकि उसे पता था ये बहुत होनहार विद्यार्थी है, और जब वो स्कूल आना बंद कर दिया तो टीचर ने सोचा क्या हुआ उसको, स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसके घर गया तो पता चला कि माँ बाप ने स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि वो आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसने माँ बाप को समझाया कि ये आपका बच्चा बहुत होशियार है, इसे पढ़ने दो, इसकी फीस मैं भरूंगा, आप इसकी फीस की चिंता मत करो। और उसने उसको फीस भर के पढ़ाया, पूरा स्कूल की पढ़ाई करवाई, और आगे क्योंकि वो बहुत जीनियस था तो वो साइंटिस्ट बनने के लिए बड़े शहर में चला गया। और काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि वो शिक्षक तो गांव में ही था, जब वो पढ़ाई वापस करके लौटा तो सबसे पहले वो अपने घर नहीं गया, सबसे पहले वो अपने उस टीचर को मिलने गया जिस टीचर के कारण आज उसने ये स्थान प्राप्त किया था। तो नहीं भूल पाते हैं जो टीचर हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। और आज अगर भगवान स्वयं हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो जीवन निर्माण तो क्या, हमारे जीवन को दिव्य बना देते हैं, उसकी शिक्षाएं हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बना देती हैं। हम भक्ति में गाते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सतगमय, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, या नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो कौन से अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और कौन से नयन से हम हीन हैं। ये दो नयन तो हैं हमारे पास, तो ज्ञान की तुलना भी नेत्र से की गई है। ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया, अंतर चक्षु जिसे हम कहते हैं। तो भगवान हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं और अज्ञान अंधकार हमारा समाप्त हो जाता है, ऐसा वो हमारा परम शिक्षक है जो हमें सद्गति का मार्ग भी बताता है, और वो हमारा सतगुरु भी है। सतगुरु से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, समझते हैं गुरु हमारे सिर पर हाथ रख दे तो उसकी आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु से हम आशीर्वाद क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं आशीर्वाद मिला तो बिना मेहनत के सफलता मिलेगी, वो हमें परिश्रम से बचाने वाला है, हमारे मार्ग को सहज करने वाला है। तो परमात्मा भी हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस संसार के गुरुओं की तरह आशीर्वाद नहीं देते हैं। भगवान के वरदान लेने का समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेले का समय। आप यहाँ आ रहे हैं अभी अमृत वेले 4:15 बजे, आप यहाँ डायमंड हॉल में योग करने आते हैं, काफ़ी भाई बहने आते होंगे, सभी तो शायद नहीं आ पाते लेकिन आप में से काफ़ी आ रहे होंगे। तो शिव बाबा ने कहा है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदानों के भंडार खुले होते हैं, वो सात्विक समय है, और उस समय अगर मैंने भगवान को माता पिता के संबंध से, शिक्षक के संबंध से, गुरु के संबंध से याद किया तो मेरी झोली उसके वरदानों से भरपूर हो जाती है। वो वरदान हमारी पुरुषार्थ को सहज बना देते हैं। वरदान माना सहज होना, है ना, उस वरदान के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सतगुरु रूप में वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं और साथ में हमारे मार्ग को सहज भी करते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमारा दोस्त भी है। खुदा दोस्त की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है। दोस्त का संबंध ऐसा है कि हम दोस्त से वो सब बातें कर लेते हैं जो अपने माता पिता से नहीं करते हैं, कई बार माता पिता से भी ज्यादा अपने फ्रेंड्स पर हमें विश्वास होता है, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ हम अपने फ्रेंड से ही करते हैं, लेकिन हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी बात किसी को ना कहे, और अगर उसने गलती से कह दी और वो बात फैल गई तो दोस्ती टूट जाती है, हमें लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर की दोस्ती ऐसे है कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देगा। आपकी बात कभी भी किसी तक नहीं जाएगी। हम अपने दिल की वो बातें भी जो हम किसी से भी नहीं कर सकते, जैसे हमने कल भी बात की थी, वो हम भगवान से कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक परम भक्त था, भगवान का दोस्त, भगवान को दोस्त बना रखा था उसने। तो उसने एक बार भगवान से कहा कि भगवान आप तो स्वर्ग में रहते हैं, मुझे भी उस जन्नत का, स्वर्ग का अनुभव करना है, कुछ दिन के लिए मुझे उस स्वर्ग का अनुभव कराइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, और उसे 10 दिन के लिए जिस जन्नत में वो रहते थे उसका मालिक बना दिया। कहा कि ये 10 दिन के लिए तुम्हारा है, तुम जो चाहो, जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो, पूरा सुख लो इसका। तो वो स्वर्ग में जब गया और उसने जब वो सब कुछ अनुभव किया तो उसको लगा 10 दिन तो बहुत कम है, मैंने इतना कम समय भगवान से मांगा स्वर्ग में रहने के लिए, और क्योंकि भगवान का दोस्त था तो विवेकशील तो था ही, तो उसका विचार चलने लगा कि स्वर्ग में तो कोई कार्य मुश्किल नहीं है, तो ये 10 दिनों के भीतर अगर मैं ऐसा ही दूसरा स्वर्ग तैयार कर लूँ तो हो सकता है। तो उसने सारे साधन जुटाए और वहाँ के जो भी सेवक थे उनको आज्ञा दी और वैसा ही एक स्वर्ग 10 दिन के अंदर तैयार कर लिया और 10 दिन में भगवान को उनका स्वर्ग लौटा दिया। पर भगवान ने देखा कि ये चतुर सुजान है, मेरे ही समान है, मेरा दोस्त, उसने अपने ही लिए दूसरा स्वर्ग तैयार कर लिया है, लेकिन वो खुश हुए कि हम बराबर पर आ गए। तो परमात्मा भी दोस्ती में हमें अपने समान स्तर पर लाना चाहते हैं। जैसे हम जब दोस्ती करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ समानता होती है, तभी दोस्ती होती है, कुछ विचार मिलते हैं, हमारी कुछ हैबिट्स मिलती हैं, नहीं तो दोस्ती नहीं होती, अगर होती भी है तो टूट जाती है। कुछ समानता होनी चाहिए। तो परमात्मा के साथ भी हमारी समानताएं हैं, आपने कल भी समझा, स्वरूप की समानता है, हमारे गुणों की समानता है, परमात्मा जिन गुणों में सागर है उन गुणों में आत्मा स्वरूप है, धाम की समानता है, हम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं। तो इसका स्मरण करके हम उस संबंध का अनुभव सहज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साजन और सजनी के संबंध की बात करते हैं तो हमने देखा मीराबाई वो ऐसी भक्त हुई जिन्होंने भगवान को पति के रूप में याद किया, तो भगवान ने भी उस संबंध को निभाया। समय आने पर लोगों ने उसको जब विष दे दिया और उनके लिए अनेक मुसीबतें आई, हमेशा भगवान ने उनकी रक्षा की। बच्चे के रूप में संबंध, कई खासकर जो माताएं होती हैं वो भगवान को बच्चे के रूप में भी याद करना चाहते हैं, जैसे अहिल्या देवी हुई, उन्होंने भगवान को बच्चे के रूप में याद किया, अभी हमने बात की। ऐसे ही अपने यहाँ जो राज्यों का अभ्यास करते हैं उन्हें बहुत अनुभव होते हैं, भगवान से अलग अलग संबंधों के अनुभव करते हैं, तो कई बार वो अपने संबंध शेयर करते हैं। तो ऐसे ही एक माता जी थी जो सेवा केंद्र पर आती थी, उनके 3 बेटे थे, उन्होंने ये अनुभव सुनाया, उनके 3 बेटे थे और वो तीनों बेटे जब बड़े हो गए तो नौकरी करने अलग अलग शहरों में चले गए और उनकी वृद्ध आयु में वो पति पत्नी अकेले रह गए घर में। ऐसा होता है कई बार बच्चे अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो उसने भगवान को अपना बेटा बनाया, कहा मेरे वो 3 बेटे के साथ साथ एक भगवान भी मेरा बेटा है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो एक दिन वो घर में अकेली थी, पति कहीं बाहर गए हुए थे और उनको बुखार आया। बुखार में ऐसे होता है कि बदन बहुत टूटता है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ करके प्यास लगी है तो एक ग्लास पानी भी लेकर पी लें, घर में कोई नहीं है। तो फिर उनको शिव बाबा की याद आई कि शिव बाबा तो मेरा बेटा है, और उन्होंने ऐसे ही कहा कि तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम पानी भी नहीं पिलाओगे मुझे। तो उन्होंने महसूस किया कि कोई पानी लेकर आया नहीं, लेकिन जो गला बहुत सूख रहा था ऐसे लगा कि गला गीला हो गया है और जो प्यास की फीलिंग थी वो खत्म हो गई, और जैसे कोई पैर दबा रहा है, सिर पर दबा रहा है, और कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आई, 2-3 घंटे तक वो सोते रहे और जब सोकर उठे तो कोई बुखार नहीं था, कोई थकान नहीं थी, बीमारी ही खत्म हो गई। तो सही समय पर याद किया तो भगवान ने, तो वो कोई मनुष्य रूप में नहीं आ जाएगा लेकिन अनुभव करा दिया और उस घड़ी से भी पार करा दिया। ऐसा हम बहुत बार अनुभव करते हैं, मेरे जीवन का अपना अनुभव है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं यहाँ से करेबियन देश जिन्हें वेस्ट इंडीज कहते हैं, उन देशों में कुछ सेवा के कार्यक्रम थे तो हमारा जाना हुआ था। करीब 1 मास का टूर था वो, उसमें ट्रिनिडाद, गयाना, सुरिनाम, वेनेजुएला, ये सब साउथ अमेरिका के देश हैं और छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पर, बहुत सारे देश हैं। तो जब वो पूरा समाप्त हुआ तो हमको लौटना था, और जिस दिन लौटना था वो हम सूरीनाम देश से लौटने वाले थे, और वो छोटा देश है, भारत जैसा ही देश है लेकिन छोटा सा देश है, और वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ से कुछ ही फ्लाइट्स चलते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे पास जो टिकट था, पूरे टूर ट्रिप का टिकट बना हुआ था, वो टिकट था वो हमने दिखाया वहाँ काउंटर पर, तो उन्होंने कहा कि आपके टिकट पर टिकट नंबर नहीं है, तो इस टिकट से आप इस प्लेन में नहीं चढ़ सकते हो, और आपको नया टिकट लेना पड़ेगा, पर नया टिकट भी आप नहीं ले सकते क्योंकि हमारा प्लेन फुल है, और इसके बाद भी आज कोई प्लेन दूसरा नहीं जाने वाला है, आज के दिन यही एक प्लेन जाएगा। तो हमने उनको समझाया कि इसी टिकट से हमने सारी यात्रा की है, कभी भी किसी ने हमसे नहीं कहा नंबर के बारे में। तो वो एयरलाइन थोड़ा चेंज हो गए थे, पहले हमने दूसरे एयरलाइन से ट्रेवल किया था, उसने कहा कि हमारी एयरलाइन में नंबर ज़रूरी है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। अब एक ही ऑप्शन था, और मैंने उसको समझाया कि ये मेरा वापसी जाने का टिकट है, और अगर मैं ये प्लेन में नहीं चढ़ी तो मेरे आगे के दो कनेक्टिंग फ्लाइट हैं, और अगर वो मिस हो गए तो मैं इंडिया नहीं पहुंच पाऊंगी। बहुत लंबा, करीब 40 घंटे का सफ़र था वो, और उसमें दो जगह प्लेन चेंज करना था, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही विकट स्थिति थी कि अगर मैं इस प्लेन में नहीं चढ़ी तो मेरा पूरा का पूरा टिकट बेकार जाएगा। तो फिर मैं, हमारे लिए तो हम शिव बाबा को ही याद करते हैं, तो हमने वो एक्चुअली सुबह 4 बजे का समय था जब हम वहाँ एयरपोर्ट पर थे, और मैं भगवान का ध्यान करने बैठ गई, तो थोड़े समय के बाद वहाँ एक बहन थी, वो मुझे आकर के बोली कि देखो अगर कोई पैसेंजर इस फ्लाइट में नहीं आया, किसी पैसेंजर ने कैंसिल कर दिया, तो फिर हम आपको नया टिकट दे देंगे प्लेन का, आपको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 घंटे इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टिकट मिलना चाहिए। तो हम बैठे रहे भगवान की याद में, और सचमुच ऐसा हुआ, सारी बोर्डिंग हो गई। उसने कहा बोर्डिंग होने के बाद हम बताएंगे आपको, सारी बोर्डिंग हो गई, और उसने कहा कि एक पैसेंजर नहीं आया है, आप टिकट ले सकते हैं, और हमने टिकट लिया। तो देखिए, हाँ, समय पर हमारा काम भगवान कर देते हैं, पूरा निश्चय अगर हमारा है तो। सब बहुत बार हम अनुभव करते हैं, एक अनुभव हमने आपको सुनाया ये। तो भगवान से अगर हम संबंध का अनुभव करते हुए अपने भाव, दिल के हृदय के भाव व्यक्त करते हैं, जो भी कई बार हमारे टेंशन्स होते हैं, कई चिंताएं होती हैं, कई बोझ होते हैं हमारे मन के ऊपर, हम सब भगवान को कह सकते हैं। संबंधों में ही हम अपनी ये सब बातें कहते हैं, तो ईश्वर से भी हमारे सर्व संबंध हैं, और इस तरह से धीरे धीरे मन ईश्वर की याद में एकाग्र होने लगता है। और एकाग्रता का अर्थ हमने समझा, भगवान की याद में मन समा जाए, यानी अन्य सभी बातों से मन बिल्कुल न्यारा है, सिर्फ ईश्वर की याद ही मेरे मन में है, ना मुझे अपने देह की स्मृति है, ना मुझे इस देह की दुनिया के संबंधों की स्मृति है। जैसे हम कहते हैं जब सागर में तैराक होते हैं तो 2 तरह के तैराक होते हैं, एक होते हैं ऊपर ऊपर लहरों में लहराने वाले, और एक होते हैं सागर के अंदर डुबकी लगा के बिल्कुल तले में चले जाते हैं, जिसे डाइवर्स कहते हैं। तो जो सागर के तले में चले जाते हैं उनके लिए वो दूसरी दुनिया होती है, और अंदर जाने के बाद बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल परे, और सागर के तले में रतन मिलते हैं, जो प्राप्ति होती है वो लहरों में नहीं होती है। तो यहाँ भी जब हम योग लगाते हैं तो एक तो होता है लहरों में लहराना, सिर्फ कुछ विचार चिंतन किया, बस यहाँ तक ही मन रहा और हम योग से बाहर आ गए, लेकिन एकाग्रता माना सागर की गहराई में चले जाना, माना इस दुनिया से पार मन बिल्कुल भगवान की याद में लीन है, जिसे हम लवलीन स्थिति कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, विलीन नहीं होती है लेकिन उसकी याद में लीन हो जाती है, मगन हो जाती है, से देह दुनिया का कोई भान नहीं रहता। जैसे मानो किसी काम में मन एकाग्र है तो हमें पता है सामने से कोई गुजर जाए, कोई क्या बोले, ढोल भी बजते रहे, हमारे पर उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि मेरा मन कहीं और है। आंखें खुली होंगी, कान से सुनाई भी देता होगा, फिर भी मैंने ना देखा ना सुना, हाँ, इसको हम एकाग्रता कहते हैं, जब मन सिर्फ लक्ष्य में है। एक कहानी आती है महाभारत में, अर्जुन और द्रोणाचार्य के शिष्यों की, कि जब उन्होंने उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा ली तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर एक आर्टिफिशियल चिड़िया रख दी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा गुरुदेव ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, डालियां पत्ते चिड़िया सब दिख रहा है। तो उन्होंने कहा तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, युधिष्ठर को बुलाया और उनसे भी वही सवाल पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा गुरुदेव सब दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा आप भी हट जाओ, आप निशाना नहीं लगा सकोगे। फिर अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन आया और उसने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम निशाना लगाओ और अर्जुन ने तीर चलाया और वो सीधा आंख पर जाकर लगा। तो लक्ष्य पर नजर थी, लक्ष्य पर नजर थी इसीलिए लक्ष्य को साध सका। ऐसे ही परमात्मा रूपी लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर की याद में बिल्कुल एकाग्र हो जाना, उस पर अगर हमारा पूरा ध्यान है तो वो एकाग्रता की स्थिति सहज बनती है। और ये स्थिति योग अग्नि का काम करती है। योग अग्नि हम इसीलिए कहते हैं, इसको अग्नि माना ऐसे नहीं कोई ताप होता है उसमें गर्मी होती है, नहीं, वो अग्नि कहलाती है लेकिन शीतल है, उतना ही मन को शीतल कर देती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाला देवी का मंदिर है और वहाँ पर दिखाते हैं कि जमीन से खोलता हुआ पानी निकलता है, आप में से कभी किसी ने देखा हो, वो खोलता हुआ पानी निकलता है लेकिन देखने में खोलता हुआ है पर होता बिल्कुल ठंडा है। तो ये भी नाम योग अग्नि है और वो योग अग्नि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज हम डालते हैं वो उसी रूप में कभी वापस नहीं आएगी। अगर हम कोई कठोर वस्तु आग में डालते हैं तो वो पिघल जाती है, मानो आपने लोहा डाला लोहा पिघल जाएगा, आपने सोना डाला, कितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सोने की अशुद्धियाँ गल के बाहर आ जाएंगी, सोना भी गल जाता है। और अगर हमने कोई कठोर ये नरम चीज़ डाली तो वो कठोर हो जाती है, मानो हमने कच्ची मिट्टी की ईंट डाली उसमें तो वो ईंट पक जाती है, इतनी कठोर हो जाती है कि उसको हम मकान बनाने में यूज करते हैं। यानी जो वस्तु जिस स्थिति में अग्नि में गई उस स्थिति में कभी वापस नहीं आएगी, रूप बदल जाएगा उसका। आत्मा ने जिस स्थिति से योग प्रारंभ किया था, एकाग्रता और अनुभूति, ये दोनों स्थितियां बहुत समीप हैं, इस स्थिति में जाते ही, इस स्थिति में पहुंचते ही अगर मन अशांत है तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, अगर मन दुखी था तो मन सुखी हो जाएगा, अगर मन उदास है तो मन आनंद में आ जाएगा, वो अतींद्रिय सुख का अनुभव करेगा, अनुभूति की उस स्थिति में हम ये अनुभव करते हैं। तो कभी भी जब हम योग से वापस उतरते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन बदल चुका है और ये आत्मा के संस्कार परिवर्तन करता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक कागज पड़ा हुआ है जमीन पर, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, वो कागज कभी नहीं जलेगा, महीनों सालों तक पड़ा रहे, लेकिन अगर एक लेंस हमने डाल करके सूर्य की किरणें फोकस कर दी तो मिनटों के अंदर वो कागज जल जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पर सूर्य की किरणें एकाग्र होते ही वो इतना तापमान बढ़ा, उसने अग्नि का रूप ले लिया। ऐसे ही परमात्मा की यूं ही याद करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते, आत्मा की अशुद्धियां दूर नहीं होती, लेकिन जब उसकी पूरी शक्ति आत्मा पर हम केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने लगते हैं, आत्मा पावन बनने लगती है, हम महसूस भी करते हैं उसको, आत्मा सतो प्रधान स्थिति में आने लगती है। ये है एकाग्रता और अनुभूति की अवस्था। तो ये थी राजयोग अभ्यास की विभिन्न अवस्थाएं, एक यात्रा की तरह, अंतर यात्रा की तरह, रूहानी यात्रा की तरह हम इस पर मन को ले जाते हैं और अनुभव करते हैं। तो आपने पिछले दो दिनों में भी अभ्यास किया है और आज भी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी, समय तो ऐसा है मैं देख रही हूँ कि अगर आपको शांति में बिठाया जाएगा तो आधे लोग तो योग करने की बजाय निद्रा योग करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप सभी खड़े हो जाएं और थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करें, हाथ पांव ऊपर करके अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। और अभी हम सभी सीधे होकर बैठेंगे। योग अभ्यास हम किस विधि से करते हैं ये आपने समझा है। आंखें खुली रख करके अपनी आत्मा पर, मस्तक के मध्य में हम मन को एकाग्र करेंगे, या सामने जो आपको लाइट दिख रही है उस लाइट पर भी अपना ध्यान आप एकाग्र कर सकते हैं। और जैसा जैसा चिंतन मैं आपको दूंगी उसी का अनुसरण करेंगे, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो तैयार करें अपने आप को, अपने मन को समेट लें। बहुत आवाजें हैं आसपास, लेकिन मेरा मन उन आवाजों में न जाए। आसपास के व्यक्तियों से भी अपने आप को समेट लें कुछ समय के लिए, देह और देह की दुनिया से पार अपने आप को आत्मचिंतन में ले जाएं और मन को चिंतन दें। मैं एक दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकते हुए सितारे के समान ज्योति पुंज है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने शरीर का, कर्मेंद्रियों का आधार लिया है। ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है। रंगमंच पर अपना पात्र निर्वाह कर रही हूं। अपने निजी स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे पसंद है, मेरा स्वभाव है। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है। ले जाए मन को इस संसार से पार परम धाम में और अपने अंतर चक्षु से देखें दिव्य प्रकाश के ब्रह्म लोक को, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है। यहाँ संपूर्ण शांति है। मेरे परमपिता परमात्मा शिव परम ज्योति स्वरूप हैं, मैं स्वयं को उनके समीप अनुभव कर रही हूँ। उनकी समीपता में वो शांति के सागर हैं, मेरा मन शांत होता जा रहा है। वो सर्वशक्तिवान है, परम पवित्र है, मेरे सच्चे माता पिता परम शिक्षक सतगुरु हैं, मेरे साथी हैं, परम हितैषी हैं। माता पिता के रूप में मैं परमात्मा का प्यार अनुभव कर रही हूँ और मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। अपना प्यार देकर मेरे जन्म जन्मांतर के दुखों से अशांति से मुझे दूर कर दिया है। शिव बाबा मेरे परम शिक्षक हैं, मुझे सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान मुझे अपने परम शिक्षक से मिला है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे मार्गदर्शक परम हितैषी हैं, कल्याणकारी हैं, सद्गुरु के रूप में मुझे गति सद्गति का मार्ग मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं। शिव बाबा के साथ में कितना सुख है, कितनी शांति है, बहुत ही न्यारापन और हल्कापन में अनुभव कर रही हूँ। मेरी अपनी सब चिंताएं मैं भगवान को सौंपती हूँ। जब सर्व समर्थ मेरे साथ है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ईश्वर से ऐसे अनुभव करते हुए मन को ले आए पुनः इस साकार जगत में। अब मेरे मन की स्थिति बदल चुकी है, मैं पहले से अधिक शांत अधिक शक्तिशाली हूँ। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।